بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب میرے سنہرے سفرنامے ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف عبد المالک مجاہد ہیں. یہ کتاب آپ کے لیے کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org www.qurtaba.org. عرض مؤلف و ناشر. زندگی ایک سفر ہے, ہم میں سے ہر شخص مسافر ہے, مگر زندگی کے اس سفر کے دوران کئی ملکوں اور شہروں کے بہت سے سفر بھی آدمی کو کرنا پڑتے ہیں. اگر ہم آنکھیں بند کر کے غور کریں تو ہم نے اپنی زندگی میں کتنے ہی سفر کیے ہوں گے. ان میں سے کچھ یاد رہ جاتے ہیں تو کچھ ذہن کے دریچوں سے نکل جاتے ہیں. یہ سفر بعض اوقات تعلیم کے لیے اور کبھی رزق کمانے یا تجارت کی غرض سے ہوتے ہیں. بعض لوگ سیر و سیاحت کے لیے اور بعض اعزاء و اقارب کی ملاقات کے لیے بھی سفر اختیار کرتے ہیں, جبکہ سفر کبھی علم میں اضافہ اور موجودہ و گزشتہ اقوام عالم کی تاریخ کے مطالعے کے لیے بھی ہوتا ہے. قرآن کریم میں بھی سفر کرنے اور دنیا کو دیکھنے کی ترغیب دی گئی ہے. سورہ مزمل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَآخَرُونَ يَدْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ. سورہ مزمل آیت نمبر 20. ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں زمین میں سفر کرتے ہیں. سورہ العنکبوت میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق. سورہ العنکبوت آیت نمبر 20. ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح خلق کی ابتدا کی. اگر ہم قرآن و حدیث میں سیر و سیاحت اور سفر کے حوالے سے بات کریں تو بہت ساری آیات میں سفر دنیا کو دیکھنے اور غور و فکر کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے. مجھے یقین ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والوں نے بہت سے سفر نامے پڑھ رکھے ہوں گے. ہر مؤلف کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے جس سے وہ اپنے مشاہدات قلم بند کرتا ہے. راقم الحروف نے بھی اپنی زندگی میں بے شمار سفر کیے ہیں. دارالسلام کی تاسیس کے بعد اس کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے مجھے دنیا کے مختلف ممالک میں جانے کا موقع ملا. جس زمانے میں یہ سفر کیے گئے اس دور میں لکھنے لکھانے کا وقت ہی نہیں ملا, بس دارالسلام میرے دل و دماغ پر سوار تھا. میں اسی کے بارے میں سوچتا اور اسی کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے الحمدللہ مسلسل جد و جہد کرتا رہا. سفر ناموں میں بالعموم مؤلف اپنے مشاہدات یا سفر میں پیش آنے والے واقعات یا تجربات لکھتا ہے. میں نے بھی جو سفر کیے اور جو مشاہدات مجھے حاصل ہوئے انہیں میں نے سپرد قلم کیا ہے. مجھے یہ فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں. میں جہاں بھی جس جگہ بھی گیا ہوں میں نے اپنے دین, مذہب, عقیدے اور اخلاق کو نہیں چھوڑا. میری کوشش رہی کہ میں جہاں جاؤں وہاں کے مسلمانوں سے ملوں, ان کے حالات معلوم کروں. اگر میں کسی غیر مسلم ملک کا سفر کروں تو ان کی معاشرت اور تہذیب و تمدن کا رنگ اپنے اوپر نہ چڑھنے دوں, بلکہ وہاں کے لوگوں کو اپنے اخلاق و کردار سے متاثر کروں. چنانچہ اصلاح احوال کے لیے میں جو کچھ کر سکتا تھا کرتا رہا. मेरे इन सफरनामों की किताबी शक्ल में अशाअत का मकसद अपनी नौजवान नस्ल को मुसलमानों के अहवाल से मुत्तला करना है, उनमें जुस्तजू, तलाश और कोशिश का मादा पैदा करना है। मैंने कोशिश की है कि जो कुछ मेरे मुशाहिदात हैं उनको बिला कम वकास्त अपने कारईन तक पहुंचा दूं। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं सिर्फ दुरुस्त और सही वाकयात ही लिखूं और किसी भी किस्म की मुबालगा आराई से मुकम्मल गुरेज करूं। किताब अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में थी कि मेरे दिल में ख्याल आया कि किताब में मजकूर सफरनामों के अलावा जिन दीगर ममालिक में मुझे जाने का इत्तफाक हुआ है वहाँ के मुख्तसर हालात भी किताब के आखिर में दर्ज कर दिए जाएं। चुनाचे एक मजमून में इख्तसार से उन ममालिक का जिक्र भी कर दिया गया है। मेरी ये भी ख्वाहिश थी कि जिन ममालिक में अब तक मैं जा चुका हूँ वहाँ का जोग्राफिया भी अगर इख्तसार से इस किताब में शामिल कर लिया जाए तो कारईन को उस मुल्क के हालात समझने में मजीद सहूलत होगी। चुनाचा मैंने दारुस्सलाम लाहौर के सीनियर रिसर्च स्कॉलर और मारूफ सहाफी जनाब मोहसिन फारानी साहब से गुजारिश की कि वो मुतालिका मुल्क का मुख्तसर सा जोग्राफिया भी लिख दें और इस मुल्क का नक्शा भी बना दें। अल्लाह ताला उन्हें जजाए खैर दे कि उन्होंने नहायत कलील मुद्दत में मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। हमने मुतालिका ममालिक के बारे में मालूमात और इसके जोग्राफिये को भी किताब का हिस्सा बना दिया है। मेरी दीगर किताबों की तरह मैंने एक मरतबा मुसव्विदा लाहौर ब्रांच को इरसाल किया, वहां से तसीह होकर आया तो फिर मोहतरम कारी मोहम्मद इकबाल अब्दुल अजीज ने इसे एक बार फिर पढ़ा, इसकी नोक पलक दुरुस्त की। किताब को मुकम्मल करना कोई आसान काम नहीं होता, इसे जितनी बार भी पढ़ें कोई ना कोई गलती या जरूरी तब्दीली नजर आ जाती है। मैं ये जरूर कहूंगा कि मैंने बहुत सारे सफरनामे सफर से कई बरस बाद लिखे हैं और महज अपने हाफजे पर भरोसा किया है, इसलिए मेरी सारी कोशिश के बावजूद अगर मालूमात में कोई नुक्स या खता रह गई हो तो उसके लिए माजरत चाहूंगा और कारीन किराम की तरफ से आने वाली तजावीज और इस्लाहात का खैर मकदम करूंगा। एक बात जहन नशीन रहे कि मेरी तमाम कुतुब उलमाए किराम के बजाय आम्मतुन नास के लिए हैं। कारीन किराम, मेरे तमाम असफार में मेरी अहलिया मोहतरमा अनीसा फिरदौस साहिबा का भरपूर तावन हमेशा शामिल रहा। मैंने जितने भी सफर किए चंद एक को छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमेशा मुझे एयरपोर्ट पर अलविदा किया और वापसी पर इस्तकबाल किया। उन्होंने मुझे हमेशा लिखने पर आमादा किया और उसके लिए खूबसूरत माहौल मुहैया किया। वो मेरे मुसव्विदात पढ़ती हैं, उन पर तबसरा करती हैं, बाज़ औक़ात तसीह भी करती हैं, उन पर नक़द भी करती हैं, मेरा हौसला भी बढ़ाती हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। बिलाशुबा मौलिफ के लिए माहौल साजगार हो तो इसे लिखने में आसानी होती है। इनके शुक्रिया के साथ मैं किताब आपके सुपुर्द करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हस्ब तौफीक अपने कीमती ख्यालात, एहसासात और मशवरों से नवाजेंगे। मुहिबकुम अब्दुल मालिक मुजाहिद, फरवरी 2013, रियाज, सऊदी अरब। सऊदी अरब मुल्क का नाम सऊदी अरब, रकबा 22,80,000 मुरब्बा किलोमीटर, आबादी 2,65,00,000, शहरी आबादी 82.1%, जबान अरबी, दारुल हुकूमत रियाज, अहम शहर मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, जद्दा, दम्माम। सऊदी अरब मगरबी एशिया में वाक़े है। हरमैन शरीफ़ैन यानी मक्का और मदीना की निस्बत से सऊदी अरब को आलम इस्लाम में एक खास मकाम हासिल है। यहाँ के हुकुमरान खुद को खादिमुल हरमैन शरीफ़ैन कहलवाते हैं। ये शर्क़ औसत का बहुत अहम मुल्क है। जजीरा नुमाए अरब का तकरीबन दो तिहाई रकबा सऊदी अरब में शामिल है। इसके शुमाल में कुवैत, इराक और उर्दुन है, जुनूब में यमन और उम्मान वाक़े हैं, मशरिक में खलीज फारस, बहरीन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, जबकि मगरिब में बहीरा अहमर वाक़े है। सऊदी अरब की तंग मगरिबी साहिली पट्टी तेहामा कहलाती है, जहाँ जद्दा, यम्बा, जुबा और जाजान की बंदरगाहें हैं। तेहामा के मशरक में हिजाज का पहाड़ी सिलसिला है, जिसे जिबालुस सिरात कहा जाता है। हिजाज में मक्का मुअज्जमा, मदीना मुनव्वरा, खैबर, तबूक और ताइफ के शहर वाक़े हैं। सऊदी अरब का सेहत अफजा शहर ताइफ भी इन्हीं पहाड़ों में वाक़े है। ताइफ से जिबालुस सिरात का सिलसिला जुनूब में आसीर और सरहद यमन तक बुलंद होता चला गया है। यहाँ अलबाहा और अबहा के शहर हैं। अबहा के शहर मगरिब में सऊदी अरब की बुलंद तरीन चोटी 3,015 मीटर ऊंची है। सऊदी अरब में माजी कदीम की नाफरमान कौमों की तबाही के आसार मिलते हैं। रुबाउल खाली के जुनूब में सऊदी अरब यमन सरहद के साथ साथ हजरमौत यानी यमन में कौमे आद आबाद थी। इस इलाके को कुरान में अल अहकाफ कहा गया है। वादी उल कुरा यानी अल ओला और मदाइने सौले अल हजर, हिजाज यानी सूबाए अल मदीनतुल मुनव्वरा में वाक़े है। यहाँ कौमे समूद के आसार हैं। सूबाए तबूक में कौमे शुएब यानी मदियन के आसार मिलते हैं। सीरत नबवी, गजवात, सिराया और सहाबाई किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम के हवाले से सऊदी अरब में जा बजा आसार मिलते हैं। बिलखुसूस हिजाज और नजद में ऐसे बेशुमार मकामात हैं। चंद मकामात के सबका और मौजूदा नाम दर्ज ज़ेल है। मौदन बनी सुलेम यानी महदुज जहब, बाइरे माउना यानी दयारे मतीर, वादी उल कुरा यानी अल ओला, अर रजी यानी अल वतिया, वादी राबे यानी वादी मर, वादी उल नखल यानी वादी उल हनाकिया, वादी मर जहरान यानी वादी फातमा, फिदक यानी अल हाइत, वादी उल फरा यानी वादी उल नखल, वादी अजम यानी वादी उल अलमहज, जुलहुलैफा यानी अब अबियार अली, दूमुल जंदल यानी अलजौफ, वादी कुदैद यानी वादी सितारा, अलमुनसरिफ यानी अलमसीजिद, अस्सफरा यानी अलवास्ता, बरकुल गिमाद यानी अलबर्क, हजर यानी अलहफूफ, अलबहरेन, अलअहसा या अलहसा। सऊदी अरब की ज़रई पैदावार में गंदुम, जौ, टमाटर, तरबूज और तुरशावा फल शामिल हैं। काबिले काश्त जमीन 1.5% है। दरिया न होने की वजह से मस्नूई आबपाशी का निजाम फैलाया गया है, जिसके तहत पानी के नलों और फव्वारों से फसलों पर छिड़काव किया जाता है। मादनी वसाइल में पेट्रोलियम, कुदरती गैस, लोहा, सोना और तांबा शामिल है। खाम तेल के जखायर 262.6 अरब डॉलर है। बहीरा अहमर और खलीज से तकरीबन 96,000 टन मछली सालाना पकड़ी जाती है। सऊदी अरब ओपेक में तेल फराहम करने वाला और बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी बरामदाद 335.3 अरब डॉलर और दरामदाद तकरीबन 99.2 अरब डॉलर हैं। सिक्का सऊदी रियाल है। सऊदी बजट 173.1 अरब डॉलर के लगभग होता है। यहाँ तालीम लाजमी है और शराय ख्वानदगी 66.1% है। जबकि फीकस आमदनी 24,200 डॉलर है, फौजी नफरी 2,33,500 है। मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जियारत। मैंने इस सुनहरे सफरनामे को काफी अरसे पहले से लिखना शुरू किया है। अगर मैं इन सारे मुल्कों के सफरनामे लिखना शुरू करूं, तो इसके लिए काफी वक्त दरकार होगा और शायद ये किताब कभी खत्म ना कर पाऊं। मोहतरम कारईन, जब ये किताब किसी हद तक मुकम्मल हो गई, तो सवाल पैदा हुआ कि सफरनामे में सबसे पहले किस शहर के बारे में लिखूं। तो मेरे दिलो दिमाग ने मदीना तैयबा की मुबारक और मोहतरम बस्ती के बारे में गवाही दी और मैंने इसी से अपने सफरनामे का आगाज किया। अपने कारईन के लिए वाजह कर दूं कि पहली बार जब मैंने इस मुबारक शहर का सफर किया और मस्जिद नबवी में नमाजें पढ़ी, रोजे अकदस पर हाजिरी की सआदत हासिल की, तो उस वक्त मदीना तैयबा को कैसा पाया। बतौर खास मस्जिद नबवी की तारीख के बारे में क्या जान पाया। मार्च 1980 में मुलाजमत की खातिर मैंने सऊदी अरब का सफर किया। हर मुसलमान की तरह मेरी भी बचपन से दिली तमन्ना थी कि इन गलियों और बाजारों को देखूं जहां हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबो रोज गुजरते थे। मेरी ख्वाहिश थी कि सऊदी अरब जाने के बाद अव्वलीन फुर्सत में उमरा करूं और मदीना तैयबा में हाजिरी दूं। अब मुझे ठीक से याद नहीं कि मैंने पहला उमरा कब किया, मगर इतना कह सकता हूं कि जैसे ही मुझे अपने कफील से इजाजत मिली और हालात कुछ साजगार हुए, तो मैंने मक्का मुकर्रमा का कस्द किया और उमरे की सआदत हासिल की। इसी सफर में मदीना तैयबा की जियारत की सआदत भी नसीब हुई। इस जमाने में मक्के से मदीने तक सिंगल सड़क थी, ट्रैफिक भी उन दिनों बहुत ज्यादा न थी। मैं जब पहली मर्तबा मदीना मुनव्वरा गया, उस वक्त हज या उमरे का मौसम तो न था। अलबत्ता एक बात बतौर खास याद है कि मैंने बार बार अल्लाह ताला से सलामती के साथ मदीना मुनव्वरा पहुंचने की दुआ कर रहा था। कभी कभार रास्ते में ख्याल आता कि न जाने मेरी किस्मत में मदीना मुनव्वरा की जियारत है भी या नहीं। मैंने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया और दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझ पर खुसूसी रहम व करम फरमा और मुझे मदीना मुनव्वरा की जियारत की सआदत से महरूम न रखना। बखैरियत व आफियत मदीना तैयबा पहुंचा देना। मोहतरम कारीन, मक्का मुकर्रमा की तरह मदीना मुनव्वरा की भी अपनी एक शानदार तारीख है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। कभी इसका नाम यसरब था, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शहर में तशरीफ आवरी के साथ ही इसका नाम मदीना तैयबा हो गया। यह ऐसा मुबारक शहर है जहां से एक बंदा मोमिन का वापस आने को कभी दिल नहीं चाहता। मैंने बारहा तस्वीर में मस्जिद नबवी और रोजा अकदस को देखा था। उस जमाने में मौजूदा तौसी नहीं हुई थी। मस्जिद का बैरूनी दरवाजा शाह सऊद के दौर का बनाया हुआ बाबे मजीदी था, जो आज भी मौजूद है। आज भी मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा तुर्कों का तामीर करता है। इस मस्जिद को तामीर हुए कई सदियां गुजर चुकी हैं, मगर ये सिर्फ खूबसूरत तामीर का ही शाहकार नहीं, बल्कि तुर्कों की मोहब्बत का भी मुंह बोलता सबूत है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी के बाद जो भी हुक्मरान आया, उसने इस शहर की खिदमत में कोई ना कोई तोहफा जरूर पेश किया। कमोबेश तमाम हुक्मरानों ने अपने अपने वसाइल के मुताबिक मस्जिद की तौसी में अपना हिस्सा डाला या कोई ऐसा काम जरूर किया जो इस शहर के शायान शान होता। मस्जिद नबवी बनू नजार के महल्ले में वाक़े है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा सरदार अब्दुल मुत्तलिब का ननियाल था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी ऐन उसी जगह बैठी थी जहाँ मस्जिद तामीर की गई। बनू नजार के दो यतीम बच्चों की ये जमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर खरीदी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इस मस्जिद की बुनियाद रखी। صحابہ کرام کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حصہ لیا. یہ مسجد اس وقت چھوٹی سی تھی مگر بعد کی توسیعات کی بدولت یہ خاصی بڑی ہو گئی. میں نے پہلی بار جب مسجد نبوی میں قدم رکھا اس کیفیت اور اپنے جذبات کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے میری دیرینہ خواہش پوری کر دی تھی. میں نے ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے. روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کے بعد خاصی دیر تک درود شریف پڑھتا رہا. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی سلام پیش کیا, ان کی بلندی درجات کی دعائیں کی. میرا قیام 2 یا 3 دن کا تھا. بڑی خواہش تھی کہ میں اس مسجد کی تاریخ کو تفصیل سے جانوں کیونکہ میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا. مسجد نبوی کی تاریخ سے بہت زیادہ واقفیت نہیں تھی. میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. میرے قریب ہی ایک سفید ریش بزرگ بھی تلاوت میں مشغول تھے. جب انہوں نے تلاوت ختم کی تو میں نے ان سے سلام کیا. تعارف ہوا تو انہوں نے بتایا, انہوں نے اپنا نام عبد العزیز شرقی بتایا. فرمایا, میں جماعت اسلامی کے تاسیسی ممبران میں سے ہوں. میرا شمار مولانا مودودی کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے. ایک مدت سے مدینہ منورہ میں مقیم ہوں. زیادہ تر وقت مسجد میں گزرتا ہے. ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا. وہ اپنے مشاہدات اور تجربات بیان کرتے رہے. انہیں مسجد نبوی کی تاریخ پر مکمل عبور تھا. فرمانے لگے, اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں مسجد نبوی کی سیر کروا دوں. عرض کی, یہ تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی. پھر میں ان کے ساتھ چل پڑا. وہ اپنی چھڑی کا سہارا لیے آہستہ آہستہ ریاض الجنہ سے نکلے. اس وقت مسجد میں رش نہ ہونے کے برابر تھا. ہم عالم تصور میں اس دور میں چلے گئے جب یہاں ایک چٹیل میدان تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے قبا میں چار دن قیام فرمایا. پھر جمعے کے روز آپ یثرب کی طرف روانہ ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو, جو آپ کے ماموں کا قبیلہ تھا, اطلاع بھیج دی تھی. وہ تلواریں حمائل کیے حاضر خدمت تھے. قارئین کرام, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں اس ٹیلے کا ذکر کرتا چلوں جو مسجد کی مغربی جانب پاکستان ہاؤس کے قرب و جوار میں واقع ہے. یہ وہی ٹیلہ ہے جس پر کھڑے ہو کر مدینے کی بچیوں نے مشہور اشعار پڑھے تھے. طلع البدر علینا من سنیات الوداع, وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا, ایہا المبعوث فینا جئتا بالامر المتاع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے لیے اس جگہ کو منتخب فرمایا تھا جہاں بنو نجار کے محلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی. مولانا عبد العزیز شرقی ہاتھ کے اشارے سے اور کبھی اپنی چھڑی سے اشارہ کر کے مجھے بتاتے تھے کہ یہ جگہ 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی. ان کے والد کا نام رافع تھا جو انتقال کر چکے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا تو ان بچوں نے یہ جگہ مفت دینے کی خواہش ظاہر کی. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کا معاوضہ ادا کرے. سیرت نگاروں کے مطابق زمین کی قیمت 10 دینار ادا کی گئی. مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو اس کی بنیادیں 3 ہاتھ گہری کھودی گئیں. مسجد بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کچی اینٹیں بنانے کا حکم دیا. صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں برابر کے شریک رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ یہ شعر پڑھتے ہوئے مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر. قارئین کرام, یہ مسجد جس کی لمبائی اس وقت کم و بیش 70 ذرا और चौड़ाई 60 जरा थी, मतलब ये हुआ कि अहदे नबवी में इसका तूल 35 मीटर और अर्ज 30 मीटर था। इसके सुतून खजूर के तनों के और छत खजूर की शाखों और पत्तों की थी, जबकि फर्श कच्चा था। जब बारिश होती तो छत टपकने लगती। तुर्कों का लिखा हुआ अब भी सुतूनों पर मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद की हद यहाँ तक थी। मस्जिद का मेहराब शुमाली शुमाल यानी ओहद पहाड़ की तरफ और मस्जिद में दाखिले के लिए दरवाजा जुनूबी जानिब था। यहाँ से करीब ही हजरत अबू अयूब अंसारी रजील ताला अन्हु का घर था, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयाम फरमाया। मौलाना अब्दुल अजीज ने मुझे मेहराब नबवी की तारीख बताई, फिर हम रियाजुल जन्ना में दाखिल हुए। ये वो मुकद्दस व मुतबर्रिक जगह है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा बैना बैती व मिम्बरी रौजतुन मिन रियाजुल जन्ना। मुत्तफिक अलैह। तर्जुमा, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है। रियाजुल जन्ना में बहुत सारे सुतून हैं। उन्होंने हर एक सुतून का तारुफ कराया। हर सुतून की अपनी तारीख है। आज भी इन सुतूनों पर इनके नाम लिखे हुए हैं। उन्होंने सैयदा आयशा के हुजरे मुबारक और दीगर उम्महातुल मोमिनीन के हुजरों की भी निशानदही की, जिनको बाद में मस्जिद की तौसी में शामिल कर लिया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के मस्जिद की तरफ खुलने वाले छोटे दरवाजे के बारे में बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अबू बकर सिद्दीक के घर के दरवाजे के अलावा जितने भी दरवाजे मस्जिद में खुलते हैं इनको बंद कर दिया जाए। कारी ने किराम, इस्लाम बड़ी तेजी से फैलता चला गया। इसके साथ ही नमाजियों में भी खूब इजाफा हुआ। मस्जिद नमाजियों से भर गई। पहले पहल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुमाल की तरफ मुंह करके नमाजें अदा की, क्योंकि बैतुल मुकद्दस मदीना मुनव्वरा से शुमाल की जानिब वाक़े है। फिर जब तहवील क़िबला का हुक्म हुआ तो मेहराब मस्जिद के जुनूबी जानिब और मस्जिद के दरवाजे शुमाली सिमत मुंतकिल किए गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 हिजरी में फतह खैबर के बाद जब वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो मस्जिद नबवी में पहली तौसी की गई। इसके बाद 17 हिजरी में हजरत उमर फारूक के अहद में और फिर 29 हिजरी में हजरत उस्मान बिन अफ्फान के दौर में तौसी की गई। 88 हिजरी में उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे मस्जिद नबवी में शामिल किए गए। ये हुजरे उस जगह थे जहां आजकल इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं और लोग दुरूद व सलाम के लिए जाते हैं। उन दिनों सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना के गवर्नर थे। उनकी निगरानी में पहली मर्तबा मस्जिद के चारों कोनों पर 4 मीनार तामीर किए गए और पहली बार मस्जिद में मेहराब बनाई गई। जब इन हुजरों को गिराया गया तो मदीना में कोहराम मच गया। लोगों का ख्याल था कि इनको यूं ही रहने दिया जाता तो बेहतर होता, ताकि लोगों को मालूम होता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कितनी सादा थी। मगर उम्मत की मसलहत की खातिर मस्जिद में तौसी जरूरी थी, इसलिए उन हुजरों को मस्जिद में शामिल कर लिया गया। कारीन किराम, मस्जिद नबवी की 5वीं बार तौसी अब्बासी खलीफा मेहदी बिन मंसूर के दौर में 161 हिजरी में हुई। फिर कमोबेश 600 साल तक मस्जिद में कोई तौसी नहीं हुई। 888 हिजरी में सुल्तान अशरफ काई तबाई के दौर में एक बार फिर मस्जिद में तौसी की गई। फिर 1265 हिजरी में सुल्तान अब्दुल मजीद उस्मानी के दौर में मस्जिद की तौसी के साथ साथ इसे नए सिरे से तामीर किया गया। मस्जिद का मौजूदा अंदरूनी हिस्सा कोई 150 साल पहले तामीर हुआ था। जब आले सऊद की हुकूमत आई तो शाह अब्दुल अजीज तैयब उल्लाह सराह के दौर में 1372 यानी 1952 में मस्जिद की फिर तौसी की गई। इसके बाद 1416 हिजरी बमुताबिक 1995 को खादिमुल हरमैन अशरीफैन के दौर में तारीख की सबसे बड़ी तौसी हुई और दौरे नबवी का सारा मदीना मस्जिद नबवी में शामिल कर लिया गया। معزز قارئین، جب ہم ان سطور کو لکھ اور پڑھ رہے ہیں، اس بات کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حال ہی میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے حکم پر خصوصی توجہ پر مسجد نبوی کی تاریخ کی سب سے بڑی توسیع کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جس کے کچھ حصے پر عمل درآمد ہو چکا ہے اور بعض حصوں پر بہت جلد کام شروع ہونے والا ہے۔ جب میں نے پہلی بار مسجد نبوی کو دیکھا تو اس وقت مسجد کے مغربی جانب شاہ فیصل کے حکم پر نمازیوں کے لیے سائبان بنائے ہوئے تھے جن میں پنکھے لگائے گئے تھے۔ ان کے پیچھے سونا، کپڑا اور دیگر اشیاء کی دکانوں کا بہت بڑا بازار تھا۔ باب النساء جو مسجد نبوی کی مشرقی جانب ہے، وہاں سے بقیع الغرقد تک جانے کے لیے چھوٹی سی گلی تھی۔ یہاں پر اکثر مکانات کچے تھے، گلی میں بمشکل دو تین افراد گزر سکتے تھے۔ اس کی دیواروں پر روغن بلسان کے اشتہار لگے ہوئے تھے جن میں اس کے فوائد لکھے ہوئے تھے۔ روغن بلسان بدر کے مقام پر جنگلی جڑی بوٹیوں سے بنایا جاتا ہے اور جوڑوں کے درد کے علاوہ بہت سارے امراض میں نہایت مفید ہے۔ بقیع الغرقد کے ارد گرد چھوٹی سی چار دیواری تھی، روضہ اقدس کے پچھلی جانب بھی چھوٹی سی گلی تھی اور یہاں پر ایک لائبریری تھی۔ مسجد میں عورتوں کے لیے علیحدہ پردے کا کوئی خاص اہتمام نہ تھا۔ جب عورتوں کو ریاض الجنہ میں لے جانا ہوتا تو مسجد میں لکڑی کے بینچ رکھ دیے جاتے۔ مجھے یاد ہے کہ تھوڑے عرصے بعد جب میری شادی ہوئی اور اہلیہ سعودی عرب آ گئیں تو میں خود انہیں ساتھ لے کر گیا اور انہیں نہ صرف ایک ایک مقام دکھلایا بلکہ مسجد نبوی کی تاریخ بھی تفصیل سے بتائی۔ اس دوران مولانا عبدالعزیز سے پھر ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی ہم دونوں کو اکٹھے مسجد نبوی کی تاریخ بتائی تھی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس دور میں بھی درود و سلام مرد اور عورتیں علیحدہ علیحدہ ہی پڑھتے تھے۔ عورتیں مشرقی جانب باب النساء کی طرف سے آتی تھی۔ اس دور میں ہوٹل بڑے سستے مل جاتے تھے، 20-25 ریال میں کمرہ مل جاتا تھا۔ یہ درست تھے کہ یہ کمرے کچے تھے اور ان میں ایئر کنڈیشنر نہ تھے، مگر مسجد سے زیادہ دور نہ تھے۔ تہجد کے لیے نکلتے تو بڑی آسانی سے ریاض الجنہ میں جگہ مل جاتی تھی۔ میں اگلے دن فجر کی نماز کے لیے مسجد آیا تو دیکھا کہ باب مجیدی کے باہر کراچی والے ریسٹورینٹ پر پائے کا دیگچہ رکھا ہوا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ نماز کے بعد پائے کھاؤں گا۔ نماز ہوئی تو اشراق تک مسجد میں ہی بیٹھ گیا۔ جب اشراق پڑھ کر مسجد سے نکلا اور ریسٹورینٹ والوں سے کھانا مانگا تو کہنے لگے پائے تو ختم ہو چکے۔ خاصی مایوسی ہوئی۔ میں نے کہا چلو کچھ دیر کے لیے واپس مسجد میں چلتے ہیں، کچھ دیر تلاوت کرتے ہیں، پھر ناشتہ کریں گے۔ مسجد میں آ کر تلاوت شروع کی۔ جب فارغ ہوا تو مولانا عبدالعزیز شرقی نظر آئے، سلام کیا تو کہنے لگے مجاہد صاحب ناشتہ کر لیا ہے۔ اب میں ان کو اسبات میں جواب تو دے نہیں سکتا تھا، اس لیے مبہم سا جواب دیا ہاں بس کر لوں گا۔ فرمانے لگے چلو میرے گھر چلتے ہیں، وہاں ناشتہ کریں گے۔ میں نے قدرے انکار کیا مگر وہ بہت محبت کرنے والے شخص تھے۔ بڑے پیار سے دعوت دی اور بار بار دی۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ ان کا گھر مسجد نبوی سے زیادہ دور نہ تھا۔ گھر میں بیٹھے تو انہوں نے بیٹے کو آواز دی ناشتہ لاؤ۔ چند منٹوں کے بعد جب ناشتہ لگا تو میں نے دیکھا کہ دسترخوان پر پائے بھی موجود تھے۔ اس ناشتے کی لذت آج بھی مجھے یاد ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ریاض واپسی پر انہیں شکریہ کا خط بھی لکھا تھا، جس کا جواب بھی موصول ہوا تھا۔ تھوڑے عرصے کے بعد خبر ملی کہ وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں نے ان کے بعد نہ جانے کتنے لوگوں کو مسجد نبوی کی سیر کروائی ہے اور اس کی تاریخ بتائی ہے۔ جب بھی کسی کو مسجد نبوی کی سیر کرواتا ہوں تو مولانا عبدالعزیز شرقی یاد آ جاتے ہیں اور میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ سعدیہ حلیمہ سعدیہ کے دیس میں۔ سعودی عرب میں اس دفعہ بدھ کے روز 13 ربیع الاول 1432 ہجری کی تاریخ تھی، لیکن پاکستان میں آج کے دن 12 ربیع الاول تھا۔ بیت اللہ شریف میں معمول سے کم رش تھا۔ فجر کی نماز کے بعد میں نے طواف ختم کیا تو بیت اللہ کے دروازے پر چمٹنے کی سعادت بڑی آسانی سے مل گئی۔ मैं कितनी देर तक दहलीज को पकड़े दुआएं मांगता रहा। पाकिस्तान के लिए मैंने बतौर खास ये दुआ मांगी, या अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा और इसे हर किस्म की बदमनी से निजात अता फरमा। बैतुल्लाह की दहलीज से चिमट कर सवाल करने का बस अपना ही मजा है। इतना चैन और सुकून मिलता है कि बच्चे को माँ की आगोश में कहाँ मिलता होगा। यूं लगता है कि सारी दुआएं कबूल हो रही हैं। मक्के का मौसम उन दिनों बड़ा खूबसूरत था, ज्यादा गर्मी ना थी और ना ही सर्दी, बस हल्की हल्की खुनकी थी। इस मर्तबा एक नया तजुर्बा हुआ कि हरम की इंतजामिया ने हजरे अस्वद को बोसा देने वालों की लाइनें लगवा दी थी। पहले खवातीन के लिए बोसा देना खासा मुश्किल हो जाता था, अब अगर 5 मिनट इंतजार कर लें तो बड़े आराम से आपकी बारी आ जाएगी। मकामे इब्राहिम पर भी ज्यादा लोग न थे, सूरज तुलू हो चुका था, लोग इशराक पढ़कर हरम से बाहर जा रहे थे। मैंने भी मकाम इब्राहिम पर 2 नफिल अदा किए और एक बार फिर अपने हाथों को बारगाह इलाही में उठा दिया। हज़रत तौफीक जिस कदर दुआ याद आई मांगी और फारिग होकर बाबे बिलाल की तरफ चल दिया। डॉक्टर ज़ईमुद्दीन हरम शरीफ के सहन में मुंतजिर थे। एक बड़े और अजीम बाप मौलाना मुइनुद्दीन लखवी के साहबजादे बड़ी मरंजान मरंज शख्सियत हैं। अपनी अहलिया के साथ दुबई में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तशरीफ लाए तो मैंने इनको रियाज आने की दावत दे डाली। हमारे पास 3 दिन कयाम करने के बाद उन्होंने मदीना तैयबा और मक्का मुकर्रमा के सफर का इरादा जाहिर किया। मैंने अपने बेटे उकाशा को इस मुकद्दस सफर में उनके हमराह कर दिया तो वो बहुत मुतमईन हुए। डॉक्टर ज़ईमुद्दीन बहुत खुश मिजाज इंसान थे। गाड़ी में साथ बैठे तो बात से बात निकालते, चुटकले छोड़ते, तबसरे करते, हंसते मुस्कुराते आपका सफर तकमील के मराहिल तय कर लेता और तवालत का एहसास तक नहीं होता। लखवी खानदान की दीनो अकीदा और मसलक के लिए बेपनाह खिदमात से आप में बहुत से हजरात वाकिफ होंगे। मौलाना मुइनुद्दीन लखवी जो इस किताब के तरतीब अशात के वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इस इल्मी और रूहानी खानदान के नुमाया चश्मो चिराग थे। तक्वा, लिल्लाहियत, इल्मी पुख्तगी और कसरत जिक्र व फिक्र के हवाले से नाबगाए रोजगार शख्सियत थे। इलाके में अपने असर व रसूख, 2 मदरसों की निजामत, अपने दीनी मिजाज और तक्वा के बावस्फ निहायत खुश मिजाज और खुश तबा आलिम की पहचान रखते थे। डॉक्टर ज़ईमुद्दीन भी अपने गिरामी कदर वालिद की बहुत सी खूबियां अपनी शख्सियत में समोए हुए थे। मैं बड़ी मुद्दत से सोच रहा था कि किसी वक्त बनू साद का इलाका देखने का प्रोग्राम बनाना चाहिए। इसके लिए मौका भी दरकार था और कोई अच्छा सा हम सफर भी। ऐसा हम जोली जिसे जोग्राफिया के साथ दिलचस्पी और वाकफियत भी हो तो सफर का लुत्फ कई गुना बढ़ जाता है। मेरे रिश्ते के एक चचा मोहतरम सैफुर रहमान एक मुद्दत से ताइफ के इंटरनेशनल स्कूल में तैनात थे। काफी देर वो बतौर एक्टिंग प्रिंसिपल भी काम करते रहे। मैंने उन्हें फोन पर अपनी ख्वाहिश से मुत्तला किया कि मैं इस इलाके को देखना चाहता हूँ तो उनका जवाब था, आप जब चाहें आ जाएं, मैं स्कूल से 1 दिन की छुट्टी ले लूंगा और बजाते खुद आपको उस जगह की सैर कराऊंगा। वो खुद मुतअद्दिद बार वहां जा चुके हैं। डॉक्टर ज़ईमुद्दीन दुबई में थे तो मैंने उनसे कहा, जनाब दारुस्सलाम से छुट्टी लेना आसान काम नहीं, दफ्तर का काम कभी खत्म नहीं होता। अगर आप रियाज आ जाएं तो आपको साथ लेकर बनू साद का इलाका देखने जाएंगे, वो जगह जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन गुजारा, उसे देखने की ख्वाहिश किस मुसलमान को ना होगी। दारुस्सलाम जद्दा ब्रांच के मैनेजर अशरफ अली खुद ही कोस्टर की ड्राइविंग कर रहे थे, वो भी इस्लामी इकदार के शहदाई हैं। बड़े मुशाक ड्राइवर हैं और पहले भी एक मर्तबा बनू साद जा चुके हैं। फरवरी 2011 के वस्त में दिन के 11 बजे हम मक्का मुकर्रमा से ताइफ पहुंचे तो मोहतरम सैफुर रहमान साहब हमारे मुंतजिर थे। उन्होंने अशरफ साहब को इशारा किया कि उनकी गाड़ी के पीछे पीछे आए। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने एक जगह पार्किंग में गाड़ी लगाई और उसमें से खाने की ढेर सारी अशिया निकालकर हमारी गाड़ी में रख दी। मैंने पूछा, ये क्या है? कहने लगे, मामूली सा नाश्ता है, मगर ये आप लोगों को सैयदा हलीमा सादिया के गांव जाकर मिलेगा। मेरी अहलिया भी रिश्ते में उनकी भतीजी लगती हैं। रिश्तेदारों से अरसे बाद मुलाकात हो तो उसका अपना ही मजा होता है। उनको अपनी गाड़ी में बिठाया, अब हमारा रुख यमन की तरफ था। सऊदी अरब में अब सड़कों का निजाम बड़ा उम्दा है। दो रोया सड़क पर हम कम उबेश 60 किलोमीटर तक चलते गए। सैफुर रहमान साहब अपने फोन से गाहे बगाहे किसी अरबी से हिदायत लेते रहे कि अचानक शकसान नामी गांव के अड्डे पर उन्होंने अशरफ साहब को गाड़ी रोकने का इशारा किया। अब उकदा खुला कि उन्होंने एक सऊदी बद्दू से तय कर रखा था कि वो हमें इस गांव से सैयदा हलीमा के गांव तक अपनी गाड़ी में ले जाएगा। हमने उसकी गाड़ी देखी, बड़े पुराने मॉडल की GMC थी जिसका दरवाजा बहुत जोर लगाने से खुलता था। खवातीन पहले तो देखकर कहने लगी, क्या अपनी गाड़ी नहीं जा सकती? मालूम हुआ कि यहाँ से मगरिब की तरफ कच्चा रास्ता है। ये पहाड़ी रास्ता है जिसमें बीसियों मोड़ हैं। ऊंची नीची पहाड़ियों के इन रास्तों को मकामी लोग ही जानते हैं और इन पर इस किस्म की गाड़ियां ही सफर कर सकती हैं। हमारे गाइड का नाम अली अलातीबी था। बड़े मजबूत और तवाना जिस्म का मालिक बद्दू जो इसी इलाके में पैदा हुआ था। मेरे इस्तफसार पे बोला, मेरा गांव यहाँ से 30 किलोमीटर के फासले पर है। मेरा वालिद ऊंट चराया करता था। मैंने 25 साल तक सऊदी आर्मी में नौकरी की है और मैंने वहां से रिटायरमेंट ले ली है। दो बीवियों से मेरे 10 बच्चे हैं। एक बीवी को तलाक दे चुका हूँ। मैंने बातों बातों में उसका मुकम्मल इंटरव्यू कर लिया। हम बेदिली के साथ उसकी गाड़ी में सवार हुए कि खासी पुरानी और बे आराम करने वाली थी, मगर हम चूंकि इस सफर के नहायत ही मुश्ताक थे इसलिए बादल नख्वास्ता ही सही इस गाड़ी में जाने को तैयार हो गए। जहर का वक्त करीब था। तय यह पाया कि हम जहर की नमाज वहां पहुंचकर अदा करेंगे। करीबन 40 मिनट का यह सफर बड़ा अच्छा गुजरा। पहाड़ी रास्ता, ऊंची नीची सड़क, इस पर अगर हम अपनी नई नवेली गाड़ी को ले जाते तो इसका सत्यानाश हो जाता और हम वहां शायद ही पहुंच पाते, क्योंकि वहां तक जाने के लिए रास्ते से वाकिफ शख्स का होना जरूरी था। मैं इस जगह की ज्यारत का बड़ी देर से मुंतजर था और चश्मे तसव्वुर से ये देख रहा था कि यहाँ से 10 बदवी खवातीन का काफिला अपने शोहरों की रहनुमाई में मक्के की तरफ जा रहा है। ये इलाका कोई जरखेज नहीं है। पहाड़ों पर खेती बाड़ी भी ज्यादा नहीं है। पहाड़ी वादियों और नशेब में कहीं कहीं थोड़ी सी जगह पर ज़राअत हो सकती है। यहाँ खारदार झाड़ियां भी कम ही हैं। लोगों का जरिया माश ऊंटों और बकरियों से होने वाली आमदनी है। वो इनका दूध पीते, इनकी खाल से फायदा उठाते और कभी कभार ज़िबह करके इनका गोश्त खाते हैं। अगर किस्मत दे और बारिश हो जाए तो कुछ खेती बाड़ी की सूरत भी निकल आती है, जिससे गेहूं की फसल हो जाती है। बनू साद के इलाके में कबीला बनी साद बिन बकर दूर दूर तक फैला हुआ है। ये खानदान असल में बनू हवाजन ही की एक शाख है। ये वही कबीला है जिसने हुनैन के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकाबला किया था। यहाँ का मौसम और आबो हवा निहायत सेहत अफजा थी। हर साल कुछ औरतें मक्का मुकर्रमा आती और वहाँ के खुशहाल और अमीर कुरैशी घरानों के शीर ख्वार बच्चों को ले जाती। दो साल तक उन्हें दूध पिलाती, फिर वालदैन के पास पहुंचा देती और उनसे उनकी हैसियत के मुताबिक इनाम और इकराम हासिल करती। इन 10 औरतों के काफिले में एक खातून हलीमा बिनते अबी जुएब भी थी। इनके खाविंद का नाम हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा और कुनियत अबू कबशा थी। दोनों मियां बीवी कबीला बनू साद बिन बकर से ताल्लुक रखते थे। इनकी दो बेटियों के नाम अनीसा और हजाफा थे। शीमा इन्हीं हजाफा का लकब था और वो इसी नाम से ज्यादा मशहूर हुई। बेटे का नाम अब्दुल्ला था और ये सबसे छोटा था। यही अब्दुल्ला रजाई भाई के तौर पर उनकी गोद में मौजूद था। इस इलाके में निहायत दर्जा गुर्बत और इफलास था। इलाके में खुश्क साली के बायस कहत पड़ा हुआ था, इसलिए ये काफिला मक्के की तरफ जा रहा था। सैयदा हलीमा एक गधी पर सवार थी। उनके पास एक ऊटनी भी थी, लेकिन इनमें से एक कतरा दूध ना निकलता था। छोटा सा अब्दुल्ला इस कदर भी लगता था कि वो रात भर सो नहीं सकते थे। जब काफिला मक्के में पहुंचा तो तमाम खवातीन दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में निकल गईं। उनके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया गया। मगर जब उनको बताया जाता कि ये बच्चा यतीम है तो वो आपको लेने से इनकार कर देती। ये हुस्न इत्तफाक था कि सैयदा हलीमा के सिवा हर औरत को कोई ना कोई बच्चा मिल गया। काफिला वापस जाने लगा तो सैयदा हलीमा ने अपने खाविंद से कहा, अल्लाह की कसम, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी तमाम सहेलियां तो बच्चे लेकर जाएं और तन्हा मैं कोई बच्चा लिए बगैर ही वापस चली जाऊं। सैयदा हलीमा ने अपने खाविंद को फैसला सुनाया कि मैं जाकर इसी यतीम बच्चे को गोद ले रही हूँ। हारिस कहने लगे, कोई हर्ज नहीं, जाओ उसी बच्चे को ले आओ, मुमकिन है उसी के जरिए हमें बरकत हासिल हो जाए। हलीमा सादिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा सैयदा आमना के पास आईं और उनसे आपको गोद ले लिया। सैयदा आमना भी खुश थीं कि उनका बेटा देहात की साफ और शफाफ आबो हवा में नशोनुमा पाएगा। उस वक्त के शुरफा का यही दस्तूर था। कुरैश को अपनी जबान की हिफाजत की भी बहुत फिक्र रहती थी। कौम के सरदार के लिए जरूरी था कि फसीहुल लिसान हो। बच्चों को बचपन ही से फसीह बलीग अरबी का आदि बनाया जाता था। कुरैश ने कुछ देहाती कबाइल मुंतखब कर रखे थे, वो बचपन ही से अपने बच्चों को परवरिश के लिए उन कबाइल में भिजवा देते थे। यहाँ की जबान शहरी इलाकों की निस्बत ज्यादा खालिफ और फसीह बलीग होती थी। बच्चे की बोलचाल पर इस फसीह लुगत के असरात पूरी जिंदगी बाकी रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया था, अना अरबुकुम अना कुरैशियुन वस्तरदातु फी बनी सादी बिन बकरिन। तर्जुमा, मैं तुम में सबसे ज्यादा शिस्ता और सही अरबी बोलने वाला हूँ। मैं कुरैशी हूँ और कबीला बनु साद में दूध पिया है, यानी जो फसाहत और बलागत में एक आला मकाम का हामिल है। आपके चचेरे भाई अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब भी जमाने रजात में बनु साद ही में थे। उन्होंने भी सैयदा हलीमा का दूध पिया था, इसलिए आपके रजाई भाई ठहरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सरदार हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब भी रजात के लिए बनु साद की एक औरत के हवाले किए गए थे। एक दिन वो औरत सैयदा हलीमा के पास थी कि सरदार हमजा को भी सैयदा हलीमा ने अपना दूध पिला दिया। इस तरह वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे रजाई भाई हो गए, क्योंकि उनको और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को सैयदा सोबिया ने भी दूध पिलाया था। सैयदा हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और अपने खैमे में आकर अपनी आगोश में रखा तो आपने जिस कदर चाहा खूब सैर होकर दूध पिया। इनके साथ ही इनके रजाई भाई अब्दुल्ला ने भी शिकम सेर होकर दूध पिया और दोनों सो गए। सैयदा हलीमा फरमाती हैं, इससे पहले बच्चा भूख की वजह से रोता रहता और हम रात को सो नहीं सकते थे। हमारी गाड़ी का ड्राइवर अली अलाती भी बड़ी चाबुक दस्ती और महारत से अपनी पुरानी लेकिन मजबूत गाड़ी चला रहा था। वो हमें इस इलाके की तारीख से भी आगाह करता गया कि एक वक्त था जब यहाँ कबाइल में जंग होती रहती थी। एक कबीले का शख्स दूसरे के इलाके में नहीं जा सकता था, मगर आले सऊद की हुकूमत आई तो यहाँ पर अमन व अमान कायम हो गया। दूर पहाड़ियों की चोटियों पर हमें बकरियां चरती हुई नजर आ रही थीं। डॉक्टर जईमुद्दीन ने कुछ देर तो सब्र किया, मगर फिर वो कहने लगे, गाड़ी रोके, हमें अगली सीट पर बैठना है। उन्होंने अपने मोबाइल से इलाके की वीडियो बनानी शुरू कर दी। सैयदा हलीमा के गाँव का नाम शोहता था। आजकल इसे बाज वका निगार शोहता भी लिखते हैं, मगर शोहता ही सही है। ये सड़क के रास्ते मक्के से 160 किलोमीटर के फासले पर है। शकसान से शोहता तक कच्चा रास्ता 15 से 20 किलोमीटर तो जरूर होगा। दूर से एक वादी की तरफ मोहतरम सैफुर रहमान ने इशारा किया कि ये रहा सैयदा हलीमा का गांव। गाड़ी ने सीधी तरफ से एक चक्कर लगाया और कदरे ऊंचे टीले पर चढ़ गई। पिछली जानिब शोहता नामी गांव नजर आ रहा था, जो दो फरलांग के फासले पर होगा। गाड़ी बतदरीज ऊपर चढ़ती चली गई। नीचे कब्रस्तान नजर आया और उसके साथ खेतियां, जो इस वक्त खुश्क थीं। अली ने गाड़ी को उल्टे हाथ घुमाया। मैंने सामने की तरफ देखा तो छोटी सी पहाड़ी के दामन में कुछ आसार नजर आए कि यहाँ पर कभी आबादी होती थी। अली ने गाड़ी पार्क की और हमसे कहा, आप लोग यहाँ पर घूमे फिरें, जब तक जी चाहे कयाम करें, तस्वीर बनाएं। जब जाने का मूड हो मुझे इशारा कर दें तो मैं आपको लेकर चलूंगा। अचानक उसने मुझसे कहा, भाई आप लोगों को तो नमाज कसर अदा करनी होगी। मैंने असबात में जवाब दिया तो उसने कहा, मैं तो मकामी हूँ, और फौरन नियत बांध कर नमाज अदा करना शुरू कर दी। इस वादी पर गोया अब्र रहमत छाया हुआ था। बहुत सुकून और इत्मीनान की फजा थी। ये कोई बड़ी वादी नहीं है, ताहम ज्यादा छोटी भी नहीं है, 15 से 20 एकड़ तो होगी। सैयदा हलीमा के गांव के हालात अब वो नहीं रहे जो कभी थे। इस वाकये को करीबन 1500 साल गुजर चुके हैं। पत्थरों के निशानात हैं, छोटी छोटी चार दीवारियां हैं। हम लोग पहाड़ी के ऊपर उल्टी तरफ चढ़ते चले गए। दो या तीन मकामात की तरफ इशारा करके हमें बताया गया कि ये सैयदा हलीमा के कबीले वालों के घर थे। किसी पाकिस्तानी ने सफेदी से शिकस्ता खत में लिखा हुआ था, बैते हलीमा। ये निहायत छोटे छोटे कमरे थे, गालिबन बारिश के वक्त ही इनमें रहा जाता होगा और बाकी वक्त खैमों में गुजरता होगा। डॉक्टर जईमुद्दीन अपनी अहलिया के हमराह बड़ी फुर्ती से पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए। मैंने एक बार फिर चश्मे तसव्वुर से देखना शुरू किया कि सैयदा हलीमा सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लिए मक्के से बनू साद की तरफ रवाना हुई हैं। जिस काफले से मक्का गई थी उसी में वापस आ रही थी। कहां मक्के जाते वक्त ये कैफियत कि उनकी गधी कमजोर और दुबलेपन का शिकार थी, मगर अब वापसी इस शान से हो रही है कि उनके अपने अल्फाज हैं, अपनी खस्ता हाल गधी पर सवार हुई और इस बच्चे को भी अपने साथ लिया। लेकिन अब वही गधी अल्लाह की कसम पूरे काफले को काट कर इस तरह आगे निकल गई कि कोई सवारी इसका साथ ना दे सकी। साथी खवातीन कह रही थी, हलीमा जरा हम पर मेहरबानी करो, आखिर ये तुम्हारी वही गधी तो है जिस पर तुम सवार होकर आई थी। मैं कहती, हाँ हाँ वल्लाह ये वही है। वो कहती, इसका यकीनन कोई सबब तो होगा। वादी के शुमाली जानिब छोटे छोटे दरख्त और घास उगी हुई नजर आई। इसके करीब ही एक छोटा सा टीला था। उस तरफ इशारा करके सैफुर रहमान साहब कहने लगे, सीना दर सीना रिवायात के मुताबिक यहाँ शक्के सदर का वाकया पेश आया था। सैयदा हलीमा के घर वाली जगह की अगर पैमाइश की जाए तो सारी मिलाकर वो 10-15 मरला से जायद ना होगी। किसी पाकिस्तानी ने या किसी और ने इस जगह मस्जिद बनाने की कोशिश की, मगर आला हुकाम ने गालिबन बिदात और खुराफात के डर से इसे मुकम्मल ना होने दिया। ताहम पत्थरों के निशानात से मेहराब और मस्जिद की निशानदही मौजूद है। मैं बार बार इस वादी की तरफ देखता, इसके जर्रे जर्रे पर गौर करता कि सुभान अल्लाह, ये वही जगह है जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन गुजारा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रजाई वालदा के साथ बनू साद में तशरीफ लाए। मैंने तारीख की किताबों में तलाश करने की कोशिश की, उस वक्त उम्र मुबारक कितने दिन या कितने माह की थी। मोहम्मद अबू शहबा अपनी सीरत नबवी की किताब में लिखते हैं कि पहले सैयदा आमना ने आपको 3, 7 या 9 दिन तक दूध पिलाया, फिर अबू लहब की लौंडी सोबिया ने करीबन इतने ही रोज आपको दूध पिलाया, और इसके बाद हलीमा सादिया वहां तशरीफ लाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले गईं। इज्जुद्दीन इब्ने जमा अब्दुल अजीज कनानी ने मुख्तसर सीरा में लिखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले सैयदा आमना ने 7 रोज तक दूध पिलाया, फिर चंद रोज सोबिया ने, और उसके बाद हलीमा सादिया पिलाती रहीं। ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बस्ती में आए तो अपने रजाई वालदैन की के लिए रहमतें और बरकतें लेकर आए। सैयदा हलीमा अपनी बात को पूरा करते हुए फरमाती हैं, हम बनू साद में अपने घरों को आ गए। मुझे मालूम नहीं कि अल्लाह की जमीन का कोई खित्ता हमारे इलाके से ज्यादा कहरजदा और खुशकसाली का शिकार था, लेकिन मक्के से वापसी के बाद मेरी बकरियां चरने जाती तो आसूदा हाल और दूध से भरपूर वापस आती। हम इन्हें दोहते और दूध पीते जब किसी और इंसान को दूध का एक कतरा भी नसीब न होता। इन जानवरों के थनों में दूध सिरे से रहता ही न था, हत्ता के हमारे कौम के लोग अपने चरवाहों से कहते, कमबख्तों जानवर वहां चराने ले जाया करो जहां अबू जुएब की बेटी का चरवाहा लेकर जाता है। लेकिन तब भी उनकी बकरियां भूखी ही वापस आती और उनके अंदर एक कतरा दूध न रहता, जबकि मेरी बकरियां आसूदा दूध से भरपूर लौटती। मैं उधर इधर उधर चलकर इस तरजमीन को मोहब्बत और अकीदत से देखता रहा, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलना शुरू किया। नन्हे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी रजाई बहन शीमा कितना प्यार करती होंगी। उनको गोद में उठाती और लोरियां सुनाती और खिलाती पिलाती और उनके नाज उठाती होंगी। सैयदा हलीमा के बकौल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बच्चों के मुकाबले में इस तेजी से बढ़ रहे थे कि 2 साल पूरे होते होते खासे बड़े मालूम होने लगे थे। अर रही कुल मख्तूम। सैयदा हलीमा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप मेरी छाती की दाई जानिब से ही दूध पीते और जब मैं बाई जानिब आगे करती तो आप मुंह हटा लेते। मगर इस पर हैरत होती, मगर सैयदा हलीमा को क्या मालूम था कि ये वो बच्चा है जो बड़ा होकर कनात का मौलिम, मसावात का आलमबरदार और अदलो इंसाफ का पैकर बनेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने बचपन ही में ये इंतजाम फरमा दिया था कि वो सिर्फ अपने हिस्से का ही दूध पिए और अपने रजाई भाइयों के हक में मदाखलत ना करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वाकयात सीरत निगारों ने बड़ी मोहब्बत से ढूंढ ढूंढ कर लिखे हैं। इनको पढ़ते या लिखते वक्त आदमी के ईमान में मजीद जरूर इजाफा हो जाता होगा। सैयदा हलीमा के गांव में हमारा वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। जिस तरफ शक्के सदर का वाकया हुआ था, वहां खारदार तार लगाकर उस एरिया को बंद कर दिया गया था। डॉक्टर जईमुद्दीन तो अपनी अहलिया समेत तेजी से चलते हुए वहां का चक्कर लगा आए थे। हमारा ख्याल था कि दोपहर का खाना, जिसे सैफुर रहमान साहब नाश्ते का नाम दे रहे थे, हम इसी नशेबी जगह पर खाएंगे, मगर जईम साहब ने इत्तला दी कि वहां ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम बैठ सकें। हमें नमाज अदा करनी थी। अशरफ साहब ने बड़ी फुर्ती से एक बड़ा कालीन गाड़ी से निकाला और इसे बिछा दिया। यही हमारी जाए नमाज है, मैंने बुलंद आवाज से तकबीर कही और डॉक्टर जईमुद्दीन को इमामत के लिए खड़ा कर दिया। उन्होंने नमाज जहर और असर कसर करके पढ़ाई। सुभान अल्लाह, दीन में कितनी आसानियां हैं। मुसाफिरों को नमाज में छूट और 2 नमाजों को इकट्ठा कर लेने की इजाजत अल्लाह ताला की खास रहमत का नतीजा है। मोहतरम सैफुर रहमान और अशरफ अली साहब ने दस्तरखान सजा दिया। एक बड़े से बर्तन का जब ढक्कन उतारा गया तो आलू के पराठे नजर आए। अब भूख भी खूब चमक उठी थी। एक बर्तन में हलवा था, अलमराई की जबान और लबन ज़ियाफ़त का मजा आ गया। आइंदा के लिए तय हो गया कि ये बेहतरीन ज़ियाफ़त है। जब कभी सफर में जाना हो तो आलू के पराठे बेहतरीन चीज है। ना बर्तनों की जरूरत, ना शोरबा गिरने का अंदेशा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मेरी निगाहें इस खूबसूरत झाड़ी की तरफ थी जो इस जगह वाकई थी, जिसके बारे में बताया गया कि वहां पर शक्के सदर का वाकया पेश आया था। यह मकाम सैयदा हलीमा के घर से ज्यादा दूर नहीं। वहां सब्जा भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 2 साल की हुई, जमाने रजात पूरा हो गया, तो सैयदा आपको लेकर मक्का मुकर्रमा आई ताकि सैयदा आमना की अमानत उनके सुपुर्द कर दें। लेकिन इस दौरान में बच्चे की जो मोहब्बत सैयदा हलीमा के घर वालों में पैदा हो चुकी थी और जिन खैर व बरकत से इस घराने को फायदा हुआ था, इसकी बिना पर सैयदा हलीमा ने सैयदा आमना से दरख्वास्त की कि कुछ अरसे के लिए इस बच्चे को हमारे पास ही रहने दिया जाए। शायद उन दिनों मक्के में वबा फैली हुई थी। सैयदा हलीमा ने बार बार दरख्वास्त की तो सैयदा आमना ने इनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली और वो आपको लेकर एक मर्तबा फिर बनू साद में आ गईं। हमारा ड्राइवर या गाइड अलिल अतीबी एक बड़े पत्थर की ओट में लेट गया। मेरी अहलिया ने बाजी नासरा से कहा, आओ बहन, तुम्हें दिखाऊं कि बद्दू कल्चर कैसा होता है। उसने अली अल अतीबी की तरफ इशारा किया कि देखो ये शख्स किस आसानी और बेतकल्लुफी के साथ जमीन पर लेटा हुआ है। हमारे पास खाना काफी मकदार में था। मैंने अली को आवाज दी, आओ अली भाई, तुम भी हमारे साथ खाने में शरीक हो जाओ। पहले तो उसने इनकार किया, मगर फिर मेरे इसरार पर झिझकते हुए शरीक हो गया। उसे भी आलू के पराठे बहुत पसंद आए। खवातीन ने अपने लिए GMC میں ہی دسترخوان بچھا لیا. میری نگاہیں اور خیالات کا رخ اس سہانے وقت کی طرف تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے لے جاتے تھے. ایک دن گھر سے قدرے دور آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آپ کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا, سینہ چاک کر کے دل نکالا اور اس میں سے خون کا ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا, یہ تم سے شیطان کا حصہ تھا. پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے واپس اپنی جگہ پر جوڑ دیا. ادھر بچے دوڑ کر اپنی والدہ سیدہ حلیمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے, محمد کو قتل کر دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. گھر والے بھاگم بھاگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ کا رنگ اترا ہوا ہے. حضرت انس بن مالک جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں, میں سلائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر دیکھا کرتا تھا. پارٹ نمبر 1 یہاں مکمل ہوتا ہے.